ایک شکایت ہم کرتے ہیں کہ ایک نامعلوم سی پریشانی ہے اندر ہمارے, جس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پریشانی کیوں ہے, یا ہمیں یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے اندر عجیب سے بے چینی رہتی ہے. یہاں دو تین مرتبہ ایک بات عرض کی کہ انسان کے ذہن کے تین حصے ہیں, ایک کانشیس مائنڈ ہے, ایک سب کانشیس مائنڈ ہے, اور ایک ان کانشیس مائنڈ ہے. ہوتا یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں کانشیس مائنڈ میں نہیں ہوتی پتہ, وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں کہیں رہتی ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں جو سب کانشیس مائنڈ میں نہیں ہوتی وہ ان کانشیس مائنڈ میں رہتی ہیں. الحمدللہ چونکہ ہمیں تعلیم شروع ہی سے ایک مل جاتی ہے, اگرچہ تربیت نہیں ہوتی, تعلیم مل جاتی ہے ہمیں, یہ پتہ چل جاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا, کن سے رکنے کا حکم دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے, تو بھلے ہم انہیں کانشیس مائنڈ میں بھلا بیٹھے ہوں, وہ ہمارے سب کانشیس میں موجود رہتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے رویے ہیں دوسروں کے ساتھ, کانشیس مائنڈ تو ہمارا اور بہت سی چیزوں سے کنٹرول ہوتا ہے کہ ہمارے مفادات ہیں. اگر مجھے کوئی تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہے تو میں بے درے اس کو جھوٹ بول دوں گا اس پر اور فائدہ حاصل کر لوں گا. اگر میرے چار پیسے بچ رہے ہیں دھوکہ دے کے, تو میں وہ دھوکہ بڑا کنوینئنٹلی وہ دھوکہ دے دوں گا دوسرے کو. لیکن ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں وہ جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ ان چیزوں سے منع کرتا ہے, ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے, سنت کے مطابق کیا ہیں یہ چیزیں, وہ سب کانشیس مائنڈ احتجاج کرتا رہتا ہے کہ یہ جو کچھ کیا تم نے غلط کیا, کیونکہ وہ سب کانشیس مائنڈ ہے, اس لیے اس کا ادراک میں ہو نہیں پاتا. تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک نامعلوم سی بے چینی ہے ہمارے اندر, ایک عجیب سی پریشانی ہے جس کی کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی, تو وہ ہم فیس کرتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی کو اگر ایک تھپڑ مارتے ہیں تو جس کو تھپڑ مارا گیا ہے اس کے تو گال پر چوٹ آئے گی, لیکن خود ہمارے اپنے ہاتھ پر بھی چوٹ آتی ہے. تو جب ہم کسی پر غصہ کرتے ہیں اور اس غصے میں ہم روڈ ہو جاتے ہیں, شاؤٹ کرتے ہیں, تو وہ دوسرے آدمی پر تو جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ہیں, لیکن اس کا اثر خود ہماری اپنی ذات پر بھی آتا ہے. تو جب ہم ایسی سچویشن میں آ جائیں کہ کوئی دوسرے صاحب ایسے ہیں جو ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे लिए पसंदीदा नहीं है, तो बजाय इसके कि हम उस पर रिएक्ट कर जाएं, तो उसको एक मुस्कुराहट से छुपा लें उस बात को कि मुझे ये कितना बुरा लगा। सामने वाला समझ तो फौरन जाएगा कि इसको ये बात पसंद नहीं आई है, लेकिन उसका एक असर ये हुआ कि ना तो हम दूसरे को हर्ट करेंगे और ना उसके असरात खुद हम पर मरतब होंगे। सुन्नत यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ऐसी चीजों पर डांटा नहीं है कभी। तो हम सुन्नत समझ के ही इस पर अमल कर लें। ये असल में कल किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी दुआ के दौरान कि मैं उनकी इस बात का जवाब दे दूं, तो चूंकि दुआ के दौरान तो इतना वक्त नहीं होता कि वहां बात की जा सके, तो मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं कल जब ये नशिस्त होगी तो सबसे पहले इसी बात का जवाब मैं दे दूंगा। कुछ सवालात बाकी रह गए थे जो मैं चूंकि बहुत दिन आया नहीं यहां तो उसका जवाब दे नहीं पाया था। इसमें सवाल ये था कि कैसे पता चले कि इंसान जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है वो उसके किसी गुनाह या गलती का नतीजा है या रूहानियत की राह की कोई आजमाइश। एट ए लाइटर नोट मैं ये अर्ज कर दूं कि रूहानियत की राह की दुश्वारियां या रूहानियत की राह पर चलने से पहले की ट्रेनिंग की सख्तियां वो तो मुझ पर उसी सूरत में आएंगी अगर मैं रूहानियत की राह पे चलूंगा। तो अगर मैं गुनाहगार हूं जैसा कि हूं तो मेरा और रूहानियत का क्या वास्ता है, और जब मेरा रूहानियत का कोई वास्ता नहीं तो उस राह की दिक्कतें क्या फेस करूंगा मैं कि उस राह पर चल ही नहीं रहा मैं। तो मुझे कुरान पाक की उस आयत को जहन में रखना चाहिए कि इंसान पर कोई मुसीबत नहीं आती मासवाए उसके अपने हाथ के, कि अगर मैं मुश्किलात का शिकार हो गया हूं तो इसमें मेरी बेतदबीरी को दखल है कि मैं अगर तदबीर से काम करता तो शायद मुझे वो दिक्कतें पेश ना आती। और एक और जो प्रॉब्लम हम सभी फेस करते हैं, खासतौर पर मुझ जैसे लोग, कि हम असूलों की राह को नहीं पकड़ पाते। मैं अगर असूल पर चलना चाहूं तो मेरी अना आड़े आ जाएगी, मेरे ताल्लुकात आड़े आ जाएंगे, मेरी रिश्तेदारियां आड़े आ जाएंगी। अगर मेरा बेटा कोई गलत काम कर रहा है तो मेरे लिए ये बड़ा दुश्वार होगा कि मैं ये कह सकूं कि नहीं मेरा बेटा गलत है, उसने गलत काम किया है, उसको नहीं करना चाहिए। अगर मेरा कोई बहन भाई उल्टी सीधे काम करता है और कोई मुझे पॉइंट आउट करे तो मेरी टेंडेंसी ये होगी कि मैं अपने बहन भाई को डिफेंड करूंगा। جبکہ رب تعالیٰ ایک مسلمان سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق کی بات کہہ دے گا. اگر اللہ مجھے توفیق دے دے تو میں آرام سے کہہ دوں گا کہ یہ میرے بیٹے نے غلط کام کیا. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ میں باپ ہوں تو میں بیٹے کو بچانے کی کوشش ضرور کروں گا. حق کی بات تو کہہ دی, اور اس کے بعد جو میری فطرت ہے بحیثیت باپ کے وہ بھی میں نے عرض کر دی کہ بحیثیت باپ کے میں اسے بچانا چاہوں گا. تو حق اور رسول کی بات اگر ہم کرتے رہیں تو شروع میں تو یقینی طور پر مشکلات آتی ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کا پھل ملنا شروع ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آدمی اصول پہ چل رہا ہے بڑا وائڈلی ریسپیکٹڈ آدمی ہوتا ہے, کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ سب یہ ہمیشہ حق اور اصول کی بات کرتا ہے یہ آدمی. تو مشکلات میں آدمی نہیں گھرتا. یہ جتنی بھی مشکلات کا سامنا ہم کرتے ہیں یہ در حقیقت اس کے پیچھے یہی بات ہوتی کہ ہم نے بے تدبیری سے کام کیا ہوا ہوتا ہے. تو انہی صاحب کا اگلا سوال ہے کہ نیکی اور پارسائی کی راہ پر چلنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کے باوجود انسان کبھی کبھی اندر سے خود کو بہت خالی اور کھوکھلا محسوس کرتا ہے, ایسا کیوں؟ کیا اخلاص اور آنسوؤں کی کمی ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر آنسو اس بات کی ضمانت دے دیں کہ میرے رونے سے میں نیک ہو جاؤں گا, تو میں ہر لمحے آنسو بہانے کو تیار ہوں. آنسو بہائے نہیں جاتے, آنسو بہتے ہیں, اور وہی درست ہے. آنسو بہانا جو ہے وہ تو نمائش میں چلا جائے. یہ جو ہم اپنے آپ کو اندر سے خالی خالی محسوس کرتے ہیں وہ در حقیقت اخلاص کی کمی ہے. تو جب ہم پورے اخلاص سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو باضابطہ احساس ہوتا ہے کہ میرا کنیکشن رب سے جڑ گیا. خواہ وہ اتنی دیر کے لیے ہو جتنی دیر ہم اس کو پکار رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں لیکن اعمال میں ہمارے نظر نہیں آتا کہ ہم کتاب کی اور سنت کی پیروی کرتے ہیں, تو وہاں بھی انسان کو اپنا آپ کھوکھلا لگے گا. اگر ہمارے اعمال یہ گواہی دینے لگیں کہ یہ کتاب اور سنت کے مطابق ہیں, तो फिर यकीन कीजिए कि अंदर से अपने आप को आदमी खोखला नहीं महसूस करेगा। होता यह है कि किताब और सुन्नत मुझे ये कह रही है कि ये आदमी जो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है इसको माफ कर दो, कि रब माफ करने वालों को पसंद करता है। लेकिन मैं बैठा हुआ उस पर दांत पीस रहा हूं, सुन्नत मुझे ये बताती है, गर्जी इन अल्फाज में नहीं, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, कि इंसान को दिया हुआ याद नहीं रहना चाहिए लेकिन लिया हुआ जरूर याद रखे। तो जब जरा से मेरे किसी से ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो मुझे दिया हुआ याद आने लगता है, न सिर्फ याद आने लगता है बल्कि जुबान पर आ जाता है। अगर किसी शख्स की कोई खामी या कमजोरी मेरे इल्म में आ गई तो किताब मुझे कह रही है कि दूसरों के ऐबों पर पर्दा डाल दो। सुन्नत ये सिखाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के ऐबों पर पर्दा डालते थे, उसको फॉलो कर लो। लेकिन जुबान का चस्का मेरा वो मुझे कह रहा है कि लोगों में बयान करो। तो हमारे अमाल जो हैं वो उनको असल में गवाही देना चाहिए कि मैं रब की मान रहा हूं। तो फिर अंदर से मैं अपने आप को खोखला महसूस नहीं करूं। तो यह अखलास की कमी है जिसकी वजह से हम अपना आप खोखला महसूस करते हैं। आगे इन्होंने पूछा है कि कभी इंसान किसी वली अल्लाह के मजार पर बार बार हाजिरी के लिए बेचैन रहता है और कभी महीनों तक एक जमूद उस पर तारी रहता है, हाजिरी की तरफ वो खुद को मायल नहीं पाता, ऐसा क्यों? इसमें दो तरह की चीजें आएंगी। एक तो इंसान पर मुख्तलिफ किस्म की कैफियत तारी होती रहती हैं। अगर ऐसी कैफियत से गुजर रहा है कि वो माइल है नेकी की तरफ बहुत ज्यादा, तो उस वक्त इंसान का दिल चाहेगा कि मैं बार बार नेक लोगों के पास जाऊं। लेकिन अगर दुनियावी मामलात उसके जहन पर ज्यादा तारी होने लगे हैं तो ये कैफियत बदल जाएगी और फिर इंसान का ज्यादा वक्त दूसरी एक्टिविटीज में जाएगा, तो उधर से रगबत कम हो जाएगी। एक अगर बैलेंस कायम रखे इंसान वो ज्यादा बेहतर है, तो फिर ये कैफियत नहीं आती अगर एक बैलेंस चल रहा है। तो एक साहब ने पूछा कि अगर मुरीद अनजाने में अपने गलतियों की वजह से अपनी जिंदगी मुश्किल बना ले और मुर्शद से उसका इजहार भी न करे, तो साहिब नजर मुर्शद अपने उस मुरीद को गैर महसूस अंदाज में मसाइब से बाहर निकालने के लिए कोई किरदार अदा करते हैं या तरबियत के लिए उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। अकायद के लिहाज से मुझे इस बात पर हमेशा इख्तलाफ रहता है मेरे मजहब में तो ये लिखा है कि मुश्किल कुशा सिर्फ रब है। मसाइब से निजात दिलाना रब को सजावार है। मुर्शिद खा किसी भी बुलंद मकाम पर फाइज क्यों ना हो, वह है गैर अल्लाह। हम मायूस अपने मुर्शिद से इसीलिए हो जाते हैं कि मुर्शिद के साथ हमारी तवक्कात वो वाबस्ता है जो नहीं होनी चाहिए। मुर्शिद साहब मेरे लिए दुआ फरमा सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं और रब ताला अपनी मर्जी का मालिक खुद है, उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता कि वो उस दुआ को कबूल जरूर करे। ये रब है जो चाहे तो दुआ कबूल करे, चाहे तो दुआ कबूल ना करे। अब अगर मेरे जहन में ये ख्याल है कि मेरे मुर्शिद साहब बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, ये दुआ करेंगे तो मेरा काम जरूर हो जाएगा, तो होगा क्या कि जो जो तो दुआएं उन्होंने मेरे लिए की और वो पूरी हो गई तो मेरी अकीदत उनसे बढ़ती गई, और जहां ये हुआ कि उनकी कोई दुआ पूरी न हुई तो मुझे गिले शिकवे शुरू हो जाएंगे रब ताला से, मुर्शिद साहब से। तो अगर मैं ये समझ लूं कि मेरे मुर्शिद भी मेरी तरह के इंसान हैं, ये और बात है कि उनको मुझ पर फौकियत हासिल है कि वो साहिब इल्म भी हैं और साहिब तकवा भी हैं, मुझसे ज्यादा मुत्तकी हैं और मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है। लेकिन है इंसान, ये मुझे मुश्किलात से निजात नहीं दिला सकते, निजात मेरा रब दिलाएगा। मुर्शिद साहब दुआ कर सकते हैं, अल्लाह अपने प्यारों की दुआएं सुनता है, उम्मीद यही है कि मेरे मुर्शिद साहब की दुआ सुन लेगा रब ताला। लेकिन बहरहाल मालिक खुद रब है, अपना ही मालिक है वो, उसकी मर्जी है दुआ कबूल करे या ना करे, रब ताला की अपनी मसलहतें हैं। तो अगर मैंने ये सोचा तो मेरी तवक्कात अपने मुर्शिद साहब से ऐसी नहीं होंगी कि जब वो तवक्को पूरी ना हो तो मेरे दिल में कोई फर्क आए। एक बुनियादी चीज तो हमें अपने जहन में ये रखनी चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मुर्शिद जो हैं वो मुश्किल कुशा हैं, ऐसा नहीं है। सर्व रब है जो मुश्किल कुशा है। हाँ, मुर्शिद साहब किस तरह से हमें निजात दिला देते हैं वो ये है कि वो हमारी हमें तालीम देते हैं और हमारी तरबियत कर देते हैं इस अंदाज में कि हम बिल्कुल सीधी राह पर चलें और सीधी राह पर चलने वालों पर मसाइब नहीं आते हैं। यूं वो इंस्ट्रूमेंटल हो जाते हैं मसाइब को हमसे दूर रखने में। ये बिल्कुल सही है। तो मुर्शिद हमारे मंबा हैं तालीम का और तरबियत का। वो दुआओं की मशीन नहीं है। हम अपने अकायद को अगर थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। अब होता यह है कि बचपन से हम कहानियां सुनते हैं औलिया अकराम के बारे में और वो बदकिस्मती से सारी कहानियां कशफ व करामात पर मबनी होती है। उसमें ऐसी कहानियां होती हैं जिस पर इंसानी अकल दंग रह जाती है। तो हमारे जहन में मुर्शिद का तस्वुर बनता ही वो है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास जाके हम अपनी मुश्किल बयान करेंगे तो वो हमारी मुश्किल हल कर देगा। वो जरिया बनता है लेकिन मुर्शिद जरिया इस तरह बनता है कि वो हमारी तरबियत ऐसे कर देता है कि हम मुश्किलात का शिकार ना होने पाए। तो हमें अपने अकायद को पहले दुरुस्त कर लेना चाहिए। और जहां तक बात यह है कि अगर एक मुरीद मुश्किलात का शिकार है या गर्म बहक रहा है तो वहां मसला एक और पैदा हो जाएगा कि आपके मुर्शिद हैं तो साहिब इल्म, उनके इल्म में अल्लाह ले आता है चीजों को, लेकिन जो मसला बन जाएगा वो ये है कि आपके मुर्शिद साहब की अपनी तरबियत किन लाइंस पर हुई है। अगर तो वो डायरेक्टली आपको ये कह दें कि मियां तुम ये गलत कर रहे हो इसको ना करो, कुछ मुर्शिद ऐसे होंगे जिनकी तरबियत बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी और सोफिस्टिकेटेड आदमी के हाथों हुई है तो वो किससे कहानियां सुनाएंगे आपको मजाक के रंग में। कोई एक किस्सा सुना दिया तो वो ये है कि उनका वो शागिर्द उस किस्से को सुनकर समझ जाएगा कि ये मुझे कही गई ये बात, मैं ये गलती कर रहा हूं, इस गलती को मैं दुरुस्त कर लूं। कुछ गलती मैंने की है संवारना वो मुझे चाहते हैं लेकिन क्या किसी और को रहे होंगे ये तवक्को होगी कि मैं उसको सुन के अपने आप को ठीक कर लूंगा। अब वो डिपेंड करता है कि शागिर्द कितना तेज है। अगर वो गूफ है तो पिक ही नहीं कर पा रहा कि उसके मुर्शिद साहब ने वो जो किसी आदमी को कहा वो दरहकीकत सुनाया मुझे गया है कि मैं ये गलती कर रहा हूं ना करूं, असर नहीं होगा। तो वो एक फर्क पड़ जाएगा कि मुर्शिद कैसे हैं। जब इंसान अपने मुर्शिद के पास बार बार जाता है तो नेचर समझ में आ जाती है तो पता चल जाता है कि मेरे मुर्शिद शर्म हया वाले हैं, ये हर आदमी की हया कायम रहने देते हैं कि डायरेक्टली नहीं कहते, जो बात मुझसे मुझे समझानी है किसी और को कह दी या सोफिस्टिकेटेड आदमी है मेरे मुर्शिद जो मेरी कोताहियां हैं वो कोई किस्सा कोई कहानी बयान कर दी मेरे सामने, तो मुझे खुद समझ जाना चाहिए कि आज ये किस्सा मुझे सुनाया क्यों गया था, तो मैं गलती कहां कर रहा हूं, अपने आप को मैं ठीक कर लूं। वो मरीज की अपनी ज़हनी इस्तात है कि वो कितनी जल्दी चीजों को पिक कर लेता है। एक साहब ने बराह रास्त मेरे ही बारे में सवाल मुझसे पूछा हुआ है कि आप बड़े शाह साहब के पास जब रोजाना मुलाकात के लिए जाते थे तो आपके लाशाऊर में इस मुलाकात की क्या वजह होती थी। सब बात यह है कि अगर मैं इस काबिल होता कि मैं अपने लाशाऊर को पढ़ सकता होता तो मुझे मुर्शिद की जरूरत क्या थी। हाँ, ये जरूर मुझसे पूछा जा सकता है कि जब मैं रोजाना मुलाकात के लिए जाता था तो मेरे जहन में उसका मकसद क्या होता था। शुरू में तो यकीनी तौर पर मैं इन्हीं तवक्कुआत के साथ जाता था जिसमें अक्सर लोग जाते हैं, लेकिन मुझे कुछ साहिब इल्म लोगों ने एक बात समझा दी थी कि आप अपने मुर्शिद साहब से दुआ ना कराया कीजिए, दुनियावी दुआ ना कराया कीजिए। तो समहर दी अदर मालूम नहीं वो लम्हा कैसा था कि वो मेरे दिल में उतर गई बात, तो मैंने जिंदगी में सिर्फ दो ही दुआओं का कहा था उनसे। दूसरी दुआ के लिए जब कहा तो वो मुझे समझा दिया कि अपने मुर्शिद साहब से आप दुनियावी दुआ करना कहा करें। तो उसके बाद फिर जब तक हयात रहे मुर्शिद साहब तो कभी उनसे दुआ का फिर इस तरह से कहा नहीं। तो जहन में एक ही बात होती थी कि इनसे सीख लिया जाए, जितना कुछ ये सिखा सकते हैं जब तक हयात हैं तो इनसे वो इल्म ले लिया जाए। जहन में तो ये ख्याल रहता था, लाशऊर में क्या था ये मुझे नहीं मालूम। इनका एक सवाल ये है कि कोई बदअकीदा शख्स हमारे शेख के बारे में गैर मोहतात अल्फाज और जुबान इस्तेमाल करता हो जिसकी वजह से हम उस शख्स से मेल जोल न रखते हों लेकिन शेख उससे ताल्लुक कायम करने के लिए कहे, तो ये हुक्म आजमाइश के लिए होता है या इसमें कोई और हिकमत पोशीदा होती है। नहीं, ना ये आजमाइश है ना कोई हिकमत इसमें पोशीदा है। बात यह है कि ये सीधा सीधा हदीस और सुन्नत पर अमल है। पहली बात तो ये, इस पर हमें बात कर लेनी चाहिए कि ये जो हम किसी को बदअकीदा कह रहे हैं वो किस बुनियाद पर हम कह रहे हैं बदअकीदा। आम रिवाज तो ये है कि जो हमारे मसलक से मेल नहीं खाता वो अकीदा हम कहते हैं कि गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। असल इसकी यार्ड स्टिक किताब हदीस सुन्नत और साहबे कराम की सुन्नत है कि किसी भी चीज के दुरुस्त होने की सनद हमें किताब से मिलनी चाहिए, कुरान पाक से। वहां से नहीं अगर मिलती है तो हदीस से मिलनी चाहिए, सुन्नत से मिलनी चाहिए, साहबा कराम के कॉल ऑफ फेल से मिलनी चाहिए। ये कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि अगर कोई आदमी उस तरह से नहीं बात को मानता या उस तरह से तस्लीम नहीं करता जैसे मैं करता हूं तो वह बदअकीदा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें कोई हक नहीं कि किसी को हम बदअकीदा कह सकें। यार्ड स्टिक वही है जो मैंने आपसे अर्ज किया। दूसरी बात कि जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुखालफीन के साथ कभी कताए ताल्लुक किया? या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया यह था कि उन सबको अपने सीने से लगाए रखते थे? तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती हैं, उनकी एक मिसाल हमारे सामने है, तो बहसियत उम्मती के हम उस पर अमल क्यों ना करें? तो अगर आपके मुर्शिद आपको ये कहते हैं कि ऐसे आदमी से कतई ताल्लुक न करें, तो वो दरहकीकत आपको सुन्नत की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर एक आदमी गलती पर है, उससे हम कताए ताल्लुक कर लें तो उसके ठीक होने के इम्कानात जीरो रह जाते हैं। लेकिन अगर उससे हम हुस्ने सुलूक से पेश आए और उसको अपने सीने से लगा के रखें, तो बहुत ज्यादा इम्कान इस बात का है कि रफ्तार रफ्तार वो ठीक हो जाएगा। तो आपके मुर्शिद आपको दर हकीकत सुन्नत पर अमल करने को कह रहे हैं। सुन्नत पर अमल बड़ा एंथुजियास्टिकली हो जाना चाहिए। ये इंसान ने फरमाया कि मेरे बारे में कि आपने कहा था कि फकीर बड़े मुस्तकिल मजाज होते हैं, जिसको एक बार नवाज दें उसे हमेशा नवाजते रहते हैं। सवाल यह है कि मुरीद अगर अपने आप को कतई तौर पर सुधार न सके तो क्या तब भी मुर्शिद का लाडले और नवाजशात उसे मयसर रहते हैं? अब इसमें एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिए। ये यकीनी तौर पर मैंने कहा था और आज भी मैं उस पर कायम हूं कि फकीर बहुत मुस्तकिल मजाज होता है, नवाजने का नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि जहां एक बार उसका ताल्लुक बन जाए फिर उस ताल्लुक वो तोड़ता नहीं है। जो काम वो एक बार करना शुरू कर दे फिर उसे कंटिन्यू रखता है वक्त है कि दूसरा आदमी उसे मना ना कर दे। नवाजने की बात मेरे ख्याल है शायद मैंने ना कही हो, क्योंकि फकीर आदमी बेचारा जो खुद मोहताज है वो किसी को क्या नवाजेगा, ये तो रब है जो नवाजता है। फकीर के आने वाले के पास आने वाले लोगों को फकीर नसीहतें नहीं करता, वो अपने आप को एक पर्सनल एग्जाम्पल के तौर पे पेश किए हुए होता है, गरचे वो कॉन्शियस एफर्ट नहीं होती उसकी, बगैर किसी कॉन्शियस एफर्ट के वो एक पर्सनल एग्जाम्पल पेश कर रहा होता है कि जिसको वो पसंद आया है वो उसकी कॉपी करनी शुरू कर देगा। तो जो आदमी उसके पास आ रहा है वो उसको वो उधर को ले जाएगा कि उसकी कॉपी करना शुरू कर दे। तो ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि आपके मुर्शिद सही आदमी है, नेक आदमी है, तो उनको कोई कॉपी करेगा तो नेकी ही की तरफ जाएगा। इंशाअल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट संडे बात होती है आपसे। अस्सलामुअलैकुम।